इल्म का मुझको शौक था कर खुदा इल्म नाफे मिले अज पाए उलमा इल्म का मुझको शौक था कर खुदा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علیشان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام کے جملہ احکام اور قرآن کی جملہ آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث بڑی خوبصورت اور بہت شاندار ہیں۔ ہدایت کا وہ ایک خزانہ ہے، لیکن بعض اوقات انہی احکام میں سے اور انہی ہدایات میں اور انہی احادیث میں کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حسن، جن کا کمال، جن کی خوبصورتی سب سے نمایاں ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت، ایک حکم اور ایک حدیث مبارک میں عرض کروں گا، اور اس حکم میں ایک جو دوسری خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور برحق دعویٰ کرتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں، تمام زمانوں کے لیے ہیں، تمام اقوام کے لیے ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہیں، تو اس دعوے کا جو ثبوت ہے وہ دین اسلام کے ان احکام کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فلاح پانے والے مومن وہ ہیں کہ جو لغو یعنی فضول، بے فائدہ، عبث اور بیکار کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورۃ المؤمنون کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو اپنی حدیث میں اس انداز میں بیان فرمایا، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، جن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جس کے ساتھ ان کی کوئی غرض نہیں ہے، جس کے ساتھ ان کا دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ان کاموں کو چھوڑ دے۔ آیت اور حدیث ان دونوں سے جو حکم شرع نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ فضول اور عبث چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ جو حکم مبارک ہے اس کا اطلاق، اس کی وسعت اور اس کا انطباق زندگی میں کہاں کہاں تک ہو سکتا ہے، اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ کتابوں کی کتابیں اس کے لیے چاہیے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور کریں تو بارہا ہم ان کاموں میں پڑے ہوتے ہیں جن کاموں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم روتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم روتے ہیں ہمارے پاس جو ہے فرصت کے لمحات نہیں نکلتے، جبکہ اپنے اگر اسکیجول پہ غور کریں تو ہمارے کاموں میں بہت سے کام وہ ہوتے ہیں کہ جو بیکار ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، بس وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں بطور خاص جو میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو اخبار کی لت ہے وہ ایک ایک دن میں چار چار اخبار ہی پڑھتے رہتے، ہر اخبار میں وہی خبر، ہر اخبار میں وہی خبر، ہر اخبار میں وہی ہیڈنگ پڑھتے رہتے۔ جن کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے، ٹاک شوز کا شوق ہے، وہ एक देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, एक टॉपिक महीनों बरसों चलता रहता है, ना उसकी ही निकलती है ना शी निकलती, उसका नतीजा ही कोई नहीं, लेकिन बस लोग लगे, एक लत है, एक एडिक्शन है, एक नशा है। और इनसे बदतर जो सूरत है वो है सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया पे जो लगा तो समझ ले कि वो दलदल में गया, और जैसे दलदल से निकलने की बंदा जितनी कोशिश करता है वो उतना धंसता जाता है। यही हाल सोशल मीडिया का है, ये मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनका है। और फिर वो जो दीन का हुक्म है, जो कुरान का हुक्म है, जो इस्लाम का हुक्म है, जो हदीस की तालीम है कि अबस और फजूल चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें, उस हुक्म की सबसे ज्यादा जो खिलाफ वर्जी है वो सोशल मीडिया पे होती है। एक फजूल किस्म की चीज वो यकदम उठती है, छा जाती, ना उसका सर ना पैर, ना उसमें अकल ना शऊर, ना उसमें हिकमत ना दानाई, ना उसका मकसद ना वो बेमकसद, वो पता नहीं क्या चीज होती है, लेकिन बस लोग यकदम उसको जो है वो एक उठान देकर और सारी की सारी कौम उसके अंदर मुब्तला हो गई। और अब उसके बाद जो फजूलियात का, लघवियात का, लहवियात का और अबस कामों का एक सिलसिला शुरू होता है, फिर वो शुरू हो जाता है। नाकाम और उससे ज्यादा नाकारा लोगों का तरीका ये है। जो कामयाब आदमी है, कामयाब आदमी कभी हो ही नहीं सकता जिसकी नजर में वक्त की कदर कीमत ना, जो फजूल और मुफीद के दरमियान फर्क न कर सके। तो हमारे यहां जो हम अपने मुल्क के बारे में रोते हैं कि जनाब हमारे मुल्क का जो है वो सत्यानाश है और ये है और वो है और लोग ऐसे वैसे, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ढंग का काम तो करना नहीं, फजूल और बेकार और लायानी कामों के अंदर दिन रात गुजारने हैं। बस सबको एक तमाशा चाहिए, एक तमाशा चाहिए, लाइक्स चाहिए, लाइक्स का मतलब पसंद चाहिए। वो बंदा भले लानत ही भेज रहा हो लेकिन चूंकि उसने देख लिया तो वो लाइक के अंदर वो कैटेगरी में शुमार हो जाएगा। तो ये लाइक्स के पीछे पड़ जाना, ये व्यूज के पीछे पड़ जाना कि जब उससे फायदा नहीं है। एक है कि हम काम करते हैं, मकसद है कि दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचे। एक आदमी चले दीन का पैगाम नहीं पहुंचाता लेकिन दूसरों के भले का कुछ करता है, कोई अच्छी चीज सिखाता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, कोई अच्छा मशवरा दे देता है, कोई कारोबार के बारे में, कोई तालीम के बारे में, कोई जिंदगी गुजारने के बारे में, कोई फैमिली लाइफ के बारे में कोई अच्छी बात बताता है, तो एटलीस्ट ये बेहतर है, ये अच्छी चीज है। लेकिन बिल्कुल ही बेहूदगी, बिल्कुल ही बेमकसदियत, ये उन्हीं लोगों का काम होता है कि जिनकी जिंदगी अबस और नाकारा होती है। और जब नाकारा बढ़ते जाते हैं और नाकारा काम बढ़ते जाते हैं और नाकारा अफराद बढ़ते जाते हैं तो वो अपाहजों का मुआशरा है। वो जिस्मानी एतबार से अपाहज नहीं, और जिस्मानी एतबार से अपाहज होना कोई बुराई नहीं है, वो खुदा की तरफ से है, बंदा सब्र करता है खुदा अजर देता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो मेंटली अपाहज है, जो मेंटली डिसेबल है, और मेंटली डिसेबल भी वो नहीं कि जिन्हें हम नीम पागल या पागल या नफ्सियाती शुमार करते हैं, वो भी खुदा की तरफ से आजमाइश होगी। ये उनकी बात है जो दीदा दानिस्ता जान बूझ कर जो जहनी मरीज बने हुए और जिनके अंदर कोई जिंदगी का मकसद ही नहीं, जिनके अंदर कोई उलूब हिम्मत ही नहीं, जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का कोई जज्बा जोश ही नहीं। तो इन सब के लिए ये जो आयत मुबारका मैंने अर्ज की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि फलाह पा गए वो ईमान वाले जो लगव से, फजूल से, बेकार से मुंह फेर लेते हैं, मुंह फेरने वाले। और हदीस मुबारक में फरमाया कि आदमी के इस्लाम के हुस्न में से है कि वो लायानी चीजों को, फजूल चीजों को छोड़ दे। लिहाजा इन अबस कामों के पीछे ना पड़े। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते ही हैं तो उस पे जो जिसे कहा जाए ना अच्छा ट्रेंड, कोई अच्छा ट्रेंड सेट करें, कोई अच्छी चीज बताएं। हमारे मुआशरे में जिस कदर बुराइयां और जिस कदर जो है वो कमियां और कोताहियां आ चुकी हैं उनमें एक एक चीज को सेट करें। खाना जो है फजूल फेंक देना, इसराफ करना, वक्त को जाया करना,
और गंदगी फैलाना, कूड़ा घर के बाहर फेंक देना, एक दूसरे का ख्याल ना करना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी ना करना, ये वो चीजें हैं जो हमारे यहाँ रच बस चुकी हैं। ये बुराइयां उनको सही करें, आप ये अमल करके दिखाएं कि भाई सिग्नल जो है वो बंद है, अगरचे वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं है लेकिन फिर भी बंदा उसकी पाबंदी करते कि नहीं सिग्नल की पाबंदी करें। कोई ऐसा ट्रेंड बना कचरा फेंकने रखते किसी के सामने तो नहीं, जो उसकी जगह है वहां फेंके, कोई ये ट्रेंड बनाए, को करने के काम करें, ना करने के कामों में पड़ जाना और फजूल में पड़े रहना, जिंदगी बर्बाद, माशरा बर्बाद, मुल्क बर्बाद, और उसके बाद फिर जितनी हमारी नेक नामी है हमारे हम वतनों की पूरी दुनिया के अंदर, कि कहीं कोई गलत हरकत होती है तो दूसरे वाला फौरन कह देता है यार ये वही लगता है, यानी कि ये हमारे पाक सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला होगा, क्यों, इसलिए कि हरकतें ऐसी। तो लिहाजा इस तरह की जो फजूल हैं उन कामों में ना पड़े, अच्छे कामों को परवान चढ़ाएं। जो हदीस मुबारक में फरमाया ना कि अल्लाह ताला जमील है जमाल को पसंद करता है, तो जो जमाल वाली चीजें हैं, जो हुस्न वाली चीजें हैं, जो कमाल वाली चीजें हैं, वो वाली चीजें अपनी जिंदगी में भी पैदा करें और उन्हीं को प्रमोट करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब सवाल की तरफ चलते हैं।
बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हैं, तो इसके ऊपर कमेंट में माशाल्लाह लिखना, सुभान अल्लाह लिखना, ये कहना है।
देखिए बात यही है कि बाज़ औक़ात एक चीज फी नफ़्सी अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर उसका जो नुकसान है वो बहुत बढ़ जाता है, यानी फिर लॉन्ग टर्म के अंदर वो नुकसानदेह हो जाती है। अब है क्या, अपने बच्चों की कोई तस्वीर शेयर करता है, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें ना अच्छी नीयत ना बुरी नीयत, तो कोई बुराई नहीं है, यानी ये कोई गुनाह की बात नहीं। हाँ कोई नीयत उसकी बुरी है तो वो उसकी नीयत के अतबार से हुक्म हो जाएगा, लेकिन होगा क्या कि जब बड़े फोरम पे तस्वीर डालेंगे और वो बच्चे को दिखाएंगे तो उस बच्चे में वो शौक पैदा होगा खुद नुमाई का। एक होता है कि बच्चों के अंदर ये जो हिस है वो तो उनमें होती है कि वो अपनी अच्छाई दिखाते हैं, वो अपने कपड़ों की तारीफ चाहते हैं, अगर वो कंघी करते हैं तो उसकी तारीफ चाहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो घर की हद तक होता है और वक्त के साथ साथ बच्चा समझ जाता है और फिर वो अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन सोशल मीडिया पे डालने का नतीजा क्या होगा कि अब उसमें ये हिस पैदा होना शुरू हो जाएगी कि लोग मेरी तारीफ करें, और वो बड़े पैमाने पे फिर उसके आमाल अफआल उसी तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और उसका आखिरी नतीजा ये निकलेगा कि फिर जिंदगी के अंदर कोई नेकी बगैर तस्वीर के उसको मजा नहीं देगी, फिर उसका जहन ये बन जाएगा कि मैं जो काम करूं ना बस उसके ऊपर वाह होनी चाहिए, उसको पसंद किया जाना चाहिए, तो ये उसका साइड इफेक्ट है। तो लिहाजा इस चीज को इतना प्रमोट नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि अब किसी ने तस्वीर डाली है और उसका डालना जायज भी था, यानी जैसे वो कोई बालिग बच्चियों की या ये है कि करीब उलुग बच्चियों की तस्वीर नहीं है, तो अब उसके ऊपर कोई माशाल्लाह कह देता है तो भी ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं। और फिर इसके साथ मजीद ये भी है कि बहरहाल अगर बच्चों की तस्वीर भी है तो उसमें भी थोड़ा सा ये देखना एक शरई तकाजों में से आता है कि अमृत की तस्वीर ना हो और वो जो उसके साथ मुतालिका चीज़ें हैं उस तरह की चीज़ें ना हो। और तीसरा पहलू इसके अंदर ये होता है कि ये तस्वीरें डालकर और ये नेमतों का इजहार करके बाज़ोकत खुद नज़र ही लग जाती है, क्योंकि दुनिया जो देखने वाली है सबकी नज़रें कैसी हैं, किसी की नज़रें तारीफ भी हो सकती है तो किसी की नज़रें हसद भी हो सकती है, किसी की नज़रें अदावत भी हो सकती है, किसी की और नज़र हो सकती है। तो अब उसका नतीजा ये भी हो सकता है कि आपने तो अपने बच्चों की तस्वीरें डाल दी और वहां पर बैठा हुआ कोई वो कि जिसकी नजर लगती है, अब आपके बच्चों को नजर लग गई, अब बच्चा बीमार रहता है, बुखार में पड़ा रहता है, बिस्तर पर लेटा रहता है, अब आप कहते हैं कि जरा पता नहीं क्या हो गया, वो हुआ यही है कि उसको नजर लगी हुई। तो लिहाजा अपने आप को थोड़ा सा नजर से बचाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए।
एक और सवाल है स्कूल बुक्स के हवाले से, जिनके अंदर कुरानी आयात हो तो उनका बगैर पढ़ना और पढ़ाने का क्या,
जिन किताबों में कुरानी आयात या कुरानी सूरतें होती हैं उसमें आमतौर पर यही होता है कि सिर्फ सूरतें नहीं होती बल्कि सूरतों के साथ कुछ ना कुछ और मवाद कंटेंट भी मौजूद होता है। अगर सिर्फ सूरतें ही हों कि जैसे तीसवा पारा ही जुदा छाप दिया, जैसे छपका भी है, या चंद एक सूरतें जो है वो कंपाइल करके जमा करके छाप दी, तो अब ये अगर सिर्फ सूरतें ही हैं फिर तो वो कुरान ही के हुक्म में है, उसको तो बेवजू ना अंदर से छू सकते हैं ना बाहर से छू सकते, لہذا اس کا معاملہ واضح. ایک یہ ہے کہ کتاب ہے, اس کے آگے پیچھے اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی تعلیمات ہیں, اب اس میں صورتیں لکھی ہوئی ہیں. اب اس صورت میں حکم جو ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ جو آیت یا ترجمہ لکھا ہوا ہے, جیسے قل ھو اللہ شریف لکھی ہے, اس کا نیچے ترجمہ ہے, تو بے وضو کی حالت میں اس آیت کو چھونا یا اس کے ترجمے کو چھونا, یہ دونوں ناجائز. اور جہاں آیت اور ترجمہ لکھا ہوا ہے جو اس کا پچھلا صفحہ ہے, وہاں پر اسے چھونا یہ بھی جائز ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک صفحہ وہ ہے کہ جس پہ صرف صورت یا صورت اور ترجمہ ہی لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, تو جس صفحے پر صرف صورت اور ترجمہ ہی لکھا ہوا ہے وہ صفحہ بھی قرآن ہی کے حکم میں ہے, لہذا اس کا جو خالی والا حصہ ہوگا, جو حاشیہ وغیرہ اوپر نیچے ہوتا ہے, اسے بھی چھونا ناجائز ہو جائے. ایک صورت یہ ہے کہ قرآن لکھا ہوا اور اوپر کچھ اور چیز ہے, نیچے جیسے اس کی تشریح ہے, تفسیر ہے, ایسا کچھ لکھا ہوا ہے, تو اب اس صورت کے اندر پھر حکم یہی ہوگا کہ جو آیت اور ترجمے والا حصہ ہے اسے چھونا ناجائز, اور جو تفسیر والا حصہ ہے اسے بے وضو چھونا مکروہ تنزیہی ہے, اور جو اس کے علاوہ باقی ہے اسے چھو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اس کے کئی صورتیں بنتی ہیں, کئی طرح کے احکام بنتے ہیں.
خالد عبداللہ تاری بھائی ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی بڑی خواب میں آئے تو کیا وہ خواب سچا ہی ہوگا, کیونکہ صرف وہی ولی آیا ہے کہ شیطان کی صورت میں نہیں آ سکتا.
ولی خواب میں آئے تو دار و مدار ہوگا اس ولی کی اس بات پر جو اس نے آ کے کہی ہے, فرمائی ہے. اگر اچھی باتیں کہی ہیں, اچھی کوئی نصیحت کی ہے, تو اسے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ واقعتاً وہ ولی ہی تھے اور شیطان نہیں تھا, اور جو انہوں نے بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے. اور اگر خواب کے اندر ولی آ کے کوئی غلط بات کہیں, تو ایسی صورت میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی. ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کچھ اور ہے, لیکن نیند کی حالت, غفلت کی حالت ہے, تو جب وہ سو کے اٹھا اسے بات یاد نہیں رہی, یا بات اس کے ذہن میں بدل گئی, یا جو کہی گئی تھی وہ ایک طویل بات تھی اور اس کا کچھ درمیان والا حصہ یاد رہ گیا, آگے پیچھے کا بھول گیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب کے اندر اگر ولی آئے تو وہ ولی ہی ہو, اور ولی کی صورت کے اندر شیطان وغیرہ نہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے. احادیث مبارک میں جو بیان کیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور اسی حدیث کی شرح میں علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معاملہ ہے کہ شیطان ان میں سے کسی کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا. اور بعض علماء نے اس میں مزید بھی تفصیل بیان کی ہے, اور بعض اکابر اولیاء کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ ان اولیاء کی صورت میں بھی شیطان نہیں آ سکتا. شیخین کریمین کے بارے میں بھی اس طرح فرمایا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی جو نظر آئے تو وہ ولی ہی ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو, ممکن بھی ہے, ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا.
لینڈر ٹائم سے 10 منٹ پہلے عصر کی اذان دی اور پھر جماعت بھی کروا دی, تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟
کیلنڈر ٹائم سے مراد جو اوقات نماز ہیں, جیسے دعوت اسلامی کا ایک کیلنڈر چھپا ہوا ہے اوقات نماز کا, اب اس میں جو وقت شروع ہونے کا لکھا ہے, مثال کے طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے 5:10 پہ عصر کا وقت شروع ہوگا, اب اس کی بجائے 5 بجے یا 5:08 پر اذان عصر دینی, تو وقت سے پہلے جو اذان دی یہ اذان شرعی اعتبار سے اذان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو جب نماز کا وقت شروع ہوا ہی نہیں, تو اس وقت یہ کہنا کہ وقت شروع ہو گیا, یہ تو الٹا جھوٹ بن جائے گا, یہ غلط ہو جائے گا. تو لہذا وقت سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی. وقت سے پہلے اذان دینے کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی سورج نکلا نہیں ہے, اور نکلنے سے 10 منٹ پہلے کو بندہ بولنا شروع کر دے جی سورج نکل آیا, سورج نکل آیا, جیسے اس کی بات غلط ہے. یا ابھی غروب نہیں ہوا اور 10 منٹ پہلے ہی بول دے جناب سورج غروب ہو گیا, روزہ افطار کر لو, تو 10 منٹ پہلے اگر لوگ روزہ افطار کر کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ غلط بیانی ہوگی. تو لہٰذا وقت سے پہلے اذان دیں گے تو وہ اذان نہیں ہوگی, وہ اعلام نہیں ہے, وہ الٹا جو ہے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنا ہے، تو لہٰذا اذان تو نہیں ہوئی، اب رہا نماز کا معاملہ، تو نماز اگر وقت کے اندر پڑی ہے تو نماز ہو گئی، اور اگر نماز بھی وقت سے پہلے شروع کر دی ہے تو پھر وہ اس وقت کی نماز نہ ہو۔
کیا جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں یا صرف 2 رکعتیں جمعے کی ہیں؟ بقیہ ظہر کی، بقیہ کو کس نیت سے پڑھتے ہیں؟
جمعے میں 2 رکعتیں فرض ہوتی ہیں، جو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ 2 رکعتیں ہیں فرض، اس کے آگے پیچھے کی جتنی رکعتیں ہیں اس میں کچھ سنت موقعہ ہیں، جیسے پہلے کی 4 اور فرضوں کے بعد کی جو 4 رکعتیں ہیں، یہ پہلے کی 4 اور بعد کی 4 یہ ہیں سنت موقعہ، اس کے بعد ہیں 2 رکعت یہ ہے سنت غیر موقعہ، اس کے بعد پڑھتے ہیں 2 نفل یہ ہے نفل، ٹھیک۔ یہ جتنے بھی موقعہ غیر موقعہ سنتیں ہیں یہ جمعے ہی سے متعلق ہیں، کیونکہ جو ہم سنتیں کہتے ہیں نا کہ فلاں نماز کی سنتیں، جیسے ظہر کی سنتیں، فجر کی سنتیں، وہ اس نماز کی طرف تبھی منسوب ہوتی ہیں کہ جب وہ نماز خود پائی جائے۔ تو جمعے والے دن جب ظہر ہی نہیں ہے تو ظہر کی سنتیں کہاں سے آئیں گی، اور جمعے والے دن چونکہ جمعہ ہے تو لہذا جو آگے پیچھے کی سنتیں اور نفل ہوں گے وہ بھی اسی جمعے ہی کی طرف منسوب کیے جائیں گے اور اسی کے تابع شمار کیے جائیں گے، تو لہذا جو پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، بعد کی 4 دو دو کر کے ہیں، ان سب کے اندر جمعے ہی کا ذہن میں رکھا جائے گا۔ جیسے اگر 4 رکعت کی نیت زبان سے کرتے ہیں تو یہ کریں گے 4 رکعت سنت مؤکدہ قبلیہ جمعہ، تو وہ جمعے سے قبل ہے، ظہر سے قبل تو ہے نہیں، تو لہذا قبلیہ جمعہ ہی اسے کہیں گے، اور جو بعد والے ہیں تو بادل جمعہ ہی کہیں گے، تو لہذا وہ جمعے سے ہی متعلق ہوں گے۔
اسلامی کارٹون دیکھنے کا کیا حکم ہے جس میں اسلامی تعلیمات؟
اسلامی کارٹون کے جس کے اندر موسیقی نہ ہو اور جس میں جو ہے خلاف شرع تعلیم نہ ہو اور جس میں کوئی بے پردگی کی ایسی چیز نہ ہو کہ جسے شرعی اعتبار سے بے پردگی اور بے حیائی میں شمار کیا جائے، تو ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی نیت سے، اچھے مقصد کے لیے، اچھی تعلیم کے طور پہ ہے تو باعث ثواب ہے۔
ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جمعے کی اذان ثانی مسجد کے محراب میں دی جا سکتی؟
جمعے کی جو اذان ثانی ہے، وہ خیر جمعے کی اذان ثانی ہو یا کوئی بھی اذان ہو، اذان دینے کا جو اصل مقام ہے وہ ہے عین مسجد سے خارج، فنائے مسجد میں ہو یا فنائے مسجد سے بھی باہر ہو۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، ندا کرنا، بلانا، یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں اس کا نام لے کے، ارے فلاں بات سنو، تو یہ جو ہے یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے اور حدیث مبارک کے اندر بھی یہی ہے کہ اذان جو ہے یہ مسجد سے باہر دی جائے، تو لہذا وہ جمعے کی اذان ثانی ہے یا اذان اول ہے یا عام نمازوں کی اذانیں ہیں، یہ ساری اذانیں جو ہے یہ مسجد سے باہر ہونی چاہیے۔ جمعے کی اذان ثانی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ عام طور پہ وہی اذان ہے کہ جو خطیب کے سامنے دی جاتی ہے، اور خطیب کے سامنے کی خاطر جو ہے وہ پھر مسجد میں کھڑے ہو کے دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو کتابوں میں بالتشریح جدید و قدیم کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علی رحمہ نے سینکڑوں کتابوں کے حوالے سے جو مسئلہ بیان کیا ہے اور جزئیات دیے ہیں، حوالہ جات لکھے ہیں، ان سب سے یہ بڑا واضح ہے کہ خطیب کے سامنے بھی جو اذان دی جائے گی وہ مسجد کے اندر نہیں دی جائے گی بلکہ مسجد سے باہر دی جائے گی۔
عبد الرحمان بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے اور ختنہ نہ کروانا چاہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟
مسلمان اس کو ہونا چاہیے، بلکہ فرض ہے کہ مسلمان ہو، مسلمان ہونا تو اہم ترین امور میں سے ہے نا، یعنی مسلمان ہونا تو وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر تو دائمی ہلاکت ہے، آخرت کی دائمی ہلاکت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تو لہذا اسلام قبول کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض قطعی ہے، یہ فرض عین ہے، لہذا وہ ختنے وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے اس سے ہرگز ہرگز عدول نہ کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ ختنے کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد کا ایک جدا گانا معاملہ ہے، اور اسے جو ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ بھی ایک شریعت کا تاکیدی حکم ہے کہ اگر اسے ترک کرے گا اور اس ترک پر وہ اصرار کرے گا جبکہ اس کے لیے ممکن بھی ہے، قدرت بھی ہے، تو اب وہ اس پر اصرار کے بعد گناہگار ہوگا، लेकिन बिलफर्ज वो गुनाहगार हो भी जाए कि अगर वाकयातन गुनाह की सूरत में गुनाहगार हो भी जाए, तब भी जो इस्लाम कबूल करना है और जो कुफर छोड़ना है वो इतना बड़ा काम है, वो इतना अजीम काम है कि उसे किसी भी सूरत इस अमल की वजह से नहीं तरक किया जा सकता। तो लिहाजा ये तालीमात बाद की है। मुसलमानों में कितने ऐसे हैं जो बहुत सारे जब वो वाजिबात के तारिक हैं, बहुत सारे गुनाहों के मुर्तकिब हैं, लेकिन उनको ये तो नहीं ना कह दिया जाता कि मादला काफिरी हो जाओ, तो ये तो सख्त तरीन बात हो जाएगी। लिहाजा खतना या किसी भी दूसरे हुक्म की वजह से इस्लाम कबूल करने से हरगिज हरगिज ना कोई रुके और ना किसी को रोका जाए।
बशीर अहमद भाई ने ये पूछने कि कब्र पर कुरान पढ़ना ठीक है या नहीं।
कब्र पे कुरान मजीद पढ़ने से मुराद यही है कि कब्र के करीब बैठ कर कुरान पाक पढ़ा जाए, क्योंकि कब्र के ऊपर बैठ के तो कोई नहीं पढ़ता। तो ये जो कब्र के करीब बैठ के कुरान पाक पढ़ना है ये ठीक है, सही है, बड़ा फजीलत का काम है, बड़ी इबादत का काम है। अहदीस मुबारका के अंदर फरमाया गया है कि जो बंदा कब्रिस्तान जाए तो वो ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, उसके अंदर सूरह इखलास जो है वो 11 मरतबा पढ़ने का तस्करा मौजूद है कि पढ़ के इसाल करेगा तो जुमला कब्रिस्तान वालों के बराबर उसे सवाब मिलेगा। तो लिहाजा कब्रिस्तान जाके कुरान मजीद पढ़ना ये आज का मामूल नहीं है, ये सदियों से मामूल है। यानी यूं कह लें कि ये जो है वो आज से कोई 800-900-1100 साल पहले से ये मामूल चलता आ रहा है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसानीफ में, अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में, इवन के जो आजकल इसके मुनकिर हैं उनके भी जो बड़े हैं उन्होंने भी अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो कुरान मजीद इस तरह पढ़ना है ये मामूल चलता आ रहा है, मामूल कदीम है, मुसलमानों का तामूल कदीम है। तो लिहाजा कब्रिस्तान जाके कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। हाँ, जो एहतियातें हैं वो ज़रूर करनी चाहिए कि वहाँ कब्र तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता कब्रों के ऊपर ही ना बना हुआ हो और कब्रों के ऊपर से गुजर के ना जाए और फिर वहां जाके पढ़ता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है।
सलाल अहमद भाई ने ये पूछ रहे हैं कि आजकल इस तरह की ऊंचे रखी जा रही है कि होंठों पर तो नहीं आती लेकिन साइड से दोनों तरफ बड़ी लंबी लंबी होती है, तो इस तरह की ऊंचे रखने के बारे में क्या?
साइडों के ऊपर तो शरी हुक्म ऐसा नहीं है, क्योंकि साइडों पे जो बढ़ती हैं तो वो बहरहाल वो या तो दाढ़ी से मिल जाती हैं और या बारह नाम भी मिले तब भी उनके ऊपर हुक्म नहीं है। हाँ, अगर उसकी मुशाबहत ऐसे किसी से होती है कि जो मिसाल के तौर पे फुसाक हैं, फुज्जार हैं या बदमाश किस्म के लोग हैं, उनका एक खास स्टाइल है, अब इस अंदाज की रखी कि जो उनसे मुशाबहत बनती है तो बुरों से मुशाबहत बुरी है। अब मंतशबा भी कौमिन फा हुआ मिन हूँ, तो जिस कौम से मुशाबहत करे वो उन्हीं में से है। तो लिहाजा जो साइड में बढ़ाएं उसके अहकाम थोड़े से जुदा हैं और जो मूछों के ऊपर से यूं नीचे आ जाए तो उसके बारे में हुक्म वासे है कि अगर वो ऐसे लबों के ऊपर आती है कि पानी पिए और मूछे उसमें जाएं तो इतनी मूछे बढ़ाना हराम है और उनको तराशना वाजिब है।
डेबिट कार्ड पर जो डिस्काउंट मिलता है इसके बारे में क्या है?
डेबिट कार्ड पर जो डिस्काउंट मिलता है तो उसको सिंपल यूं समझ लें कि डेबिट कार्ड ये होता है कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं हम अपने कार्ड के जरिए उतने पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है डेबिट कार्ड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में जो हमारे पैसे हैं वो हैं कर्ज, वो कर्ज हमारा बैंक में मौजूद है और उसके बिना पे हमें कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये डिस्काउंट दो तरह हो सकता है, ये डिस्काउंट बैंक की तरफ से भी हो सकता है और उस दुकान या शॉप या रेस्टोरेंट की तरफ से भी हो सकता है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट पे खाने के लिए गए, अगर तो रेस्टोरेंट वाले ने हमें डिस्काउंट दिया तो ये उसका मामला है, हमने ना उसे दरख्वास्त की है ना उसे मांगा है और हमने अपना कार्ड इस्तेमाल किया, उसने डिस्काउंट दे दिया तो वो उसकी मर्जी थी, मुफ्ती खिला देता हमें, लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात ये है कि बैंक डिस्काउंट दे, अब बैंक अगर डिस्काउंट देता है तो अब हमारा कर्ज है बैंक में और बैंक ने हमें डिस्काउंट दिया, ज़ाहरी एतबार से तो ये ऐसा लगा कि गोया कर्ज के ऊपर ये नफा है, लेकिन कर्ज पर जो नफा हराम है, जो सूद है, वो होता है कि जो कर्ज देते वक्त मशरूत हो तय किया जाए कि भाई हम आपके अकाउंट खुलवा रहे हैं, आप इस बिना पे हमें ये फैसिलिटी देंगे, ये डिस्काउंट देंगे, ये शर्त रखी तो अब जो नफा उठाएंगे ये हराम होगा, ये सूद होगा। लेकिन आम तौर पे ये जो डेबिट कार्ड के ऊपर प्रॉफिट ये इस तरह का डिस्काउंट होता है कि किसी रेस्टोरेंट पे गए और वो खाना खाया तो ये मशरूत नहीं होता, कभी कभार बैंक ये अनाउंस कर देता है कि जनाब हम ये अपने जो है ना वो लोगों को या अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, कभी बंद कर देता है, एक महीना चलता है एक महीना बंद हो जाता है, कभी उस जो है वो रेस्टोरेंट पे डिस्काउंट है कभी उस पर डिस्काउंट है। तो ये वो डिस्काउंट, ये वो नफ़ा है कि जो असले अक्द में एग्रीमेंट में मशरूत नहीं है, लिहाजा जब मशरूत नहीं है तो फिर ये जायज़ है। हाँ अगर ये मशरूत हो, जैसे मिसाल के तौर पे कार्ड्स की भी किस्में होती हैं, सिल्वर कार्ड होता है, गोल्डन कार्ड होता है, प्लाटिनियम कार्ड होता है, तो इसमें जो है वो जो मुझे याद पड़ता है कि शायद प्लाटिनियम कार्ड के ऊपर इस तरह के डिस्काउंट्स हैं कि जो बाकायदा असले अक्द में मशरूत होते हैं। तो अगर वाकईतन ऐसा है तो फिर ये वाली जो सूरत है ये नाजायज हो जाए। तो लिहाजा खुलासा कलाम ये है कि डेबिट कार्ड पे जो प्रॉफिट है, जो डिस्काउंट है, वो अगर शॉप या रेस्टोरेंट वाला देता है तो कोई हर्ज नहीं, अगर बैंक देता है और वो असले अक्द में मशरूत नहीं है तो जायज़ है, और अगर असले अक्द में मशरूत है तो फिर ये नाजायज हो जाएगा।
याद भाई हैं ये पूछ रहे हैं कि दौरान नमाज अपनी परेशानियों को याद करके रोना कैसा है?
दौरान नमाज अपनी परेशानियों को याद करके रोना जो है वो दो तरह हो सकता है। एक तो ये है कि खुद उन परेशानियों पर ही रोना, तो अब नमाज के अंदर तवज्जो उधर करना तो ये तो एक नामुनासिब चीज है। एक ये है कि तवज्जो नहीं की लेकिन कोई गम ऐसा गालिब है कि खुद ही रोना आ जाता है, जैसे किसी का कोई करीबी अजीज फौत हो जाए या किसी का बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो ये इख्तियार में नहीं होता, तो जो गैर इख्तियारी है उस पर शरीयत कोई हुक्म नहीं देती। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि नमाज में अपने गम को याद करके रो रहा है लेकिन वो रो रहा है खुदा की बारगाह में, उसको रोना जो आ रहा है वो इस तौर पर है कि मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा हूं, जो कारसाज है, जो मुश्किल कुशा है, जो हाजत रवा है, जो दाफ़िउल बला है, तो लिहाजा मैं उसकी बारगाह में अपनी फरियाद लेके और अपनी परेशानियों के साथ खड़ा हुआ हूं, तो मेरा रब मेरी मुश्किलात को आसान कर दे, इस मुसीबत को दूर कर दे, उसकी तलाफी होती है तो तलाफी कर दे वरना मेरे दिल को करार दे दे, तो इस सोच के साथ खड़े होना। तो ये वाली जो सूरत है तो ये तो असल उसूल मतलूब शरा है, ये तो असल बंदगी है, असल अबदियत है कि बंदा खुदा की बारगाह में अपनी फरियाद करता है, इन्नामा अशकू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। तो ये तो कुरान पाक की आयत मुबारक अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ की मसनी अदू व अंत अरहमुर राहिमीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। तो ये तो फिर सुन्नत में आ जाएगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये तो अफजल चीज़ है।
नमाज की जो सुन्नत कमलियाँ हैं वो अदा करने के बाद तकरीबन 10 मिनट 5 मिनट मिलते हैं बंदे को, क्या उस औकात में वो कज़ा नमाज अदा कर सकता है जो उसके जिम्मे है?
सुन्नतों और फर्जों के दरमियान जो वक्त होता है इसमें कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, जैसे असर की सुन्नतें पढ़ी बाद में टाइम है कज़ा पढ़ लें, जोर की सुन्नतें पढ़ी फर्जों में ताखीर है कज़ा पढ़ लें, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर ये लोगों के सामने पढ़ेगा तो लोग इसके बारे में जो है वो मुतरद्दिद हो जाएंगे कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, सुन्नत तो पढ़ चुका अब ये क्या पढ़ रहा है, तो फिर ऐसा ना हो कि खाही ना खाही लोगों के दिल में बदगुमानी पैदा हो कि भाई इसने नमाजें छोड़ी होगी तो ये वो पढ़ रहा है, तो लिहाजा लोगों के सामने इस अंदाज में जो कज़ा है वो नहीं पढ़नी चाहिए। और वैसे बाहर जो फिकही एतबार से है तो कोई मकरूह है या ऐसा है तो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो जायज़ है।
पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती?
नाबीना इमाम के पीछे तरावी पढ़ी जा सकती है, हुक्म शरई ये है कि अगर इमाम नाबीना और बीना दोनों दस्तियाब हैं तो इस सूरत के अंदर जो अंखियारा है आंखों वाला है तो उसके पीछे पढ़ना बेहतर है, जबकि ये और वो दोनों बराबर हो, यानी दोनों इल्म में तहारत में और नमाज के मसाइल जानने में बराबर है, और अगर जो नाबीना है अगर उसकी हालत और कैफियत दूसरे से बेहतर है तो फिर उसके पीछे बिल्कुल बिला कराहत और बिला हर्ज के उसके पीछे पढ़ सकते हैं। और तरावी का मामला ये होता है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जो नाबीना हुफाज हैं वो दस्तियाब होते हैं, दूसरा नहीं होता, और वो नाबीना जो है वो अपनी पाकी वगैरह का ख्याल करते हैं और नमाज के मसाइल का ख्याल करते हैं और जानते हैं तहारत के मसाइल जानते हैं, तो उनके पीछे पढ़ने में कोई हरज नहीं है। आमीन बिचाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले तज पाए उलमा, इल्म का मुझको